यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्री राधा माधव की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 9 अध्याय का नाम मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार श्लोक क्रमांक 12 ततो गृहात्वा अमृत भाजनाम हरि बभासई सत्स्मित शोभया गिरा यदि अभ्युपेतम क्वच साधव साधुव कृतम मया वो विभजे सुधामि माम ततो गृहत्वा मृत भाजनाम हरिर् बभास ईसत्स्मित शोभया गिरा यदि अभ्युपेतम क्वच साधव साधुव कृतम मया वो विभजे शोधामि मा ततो गृहत्वा मृत भाजनाम हरिर् बभास ईसत्स्मित शोभया गिरा यदि अभ्युपेतम क्वच साधवा साधुव कृतम मया वो विभजे सुधामि माम माताजी शब्दार्थ ततः तत्पश्चात गृहीत्वा लेकर अमृतभाजनम अमृत पात्र को हरि मोहिनी के रूप में श्री हरि ने प्रभाष कहा इशत कुछ कुछ स्मित शोभया गिरा हस्ती मुद्रा से तथा शब्दों से यदि यदि अभ्युपेतम स्वीकार करने का वचन वच जो भी हो साधु असाधु वा अच्छा या बुरा कृतम मया मेरे द्वारा किया गया वह तुम्हारे लिए विभजे तुम्हें समुचित भाग प्रदान करूंगी सुधाम अमृत को इमाम इस अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले उस मोहिनी मूर्ति ने कहा मेरे प्रिय असुरो मैं जो कुछ भी करूं चाहे वो खरा हो या खोटा यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं है वह जो कुछ करते हैं वह परम पूर्ण है। निसंदेह असुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे अतः मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मान्य होगा। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक धामयं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत देश तारिणे नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद एक बार क्लास दे रहे थे लॉस एंजलिस में 1972, और ये पहले स्कंद का श्लोक था। तो उसमें वर्णन आता है अवतारों का, तो 12वां अवतार धन्वंतरी जो नेक्टर लेके आते हैं, और 13वां अवतार है मोहिनी मूर्ति। तो जैसे मोहिनी मूर्ति का नाम आता है, ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है, प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में यूज वर्ड ये यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। और फिर कहते हैं कि बहुत सुंदर पत्नी होना ये अच्छा नहीं है, किसी के बहुत सुंदर पत्नी है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मोहिनी का नाम आने के बाद प्रभुपाद जी फिर पत्नी पे आ जाते हैं। और फिर कहते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि चार शत्रु होते हैं फैमिली में, सबको बताया राइट, अगर ऋणा करता पिता शत्रु, अगर पिता ने ऋण ऋण लिया है और उसके आगे वाले को भरना पड़ता है तो वो शत्रु है, ठीक है। माता शत्रु व्यभचारिणी, अगर माता दूसरी शादी कर लेती है तो गलत है, वो आपकी शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु, अगर आपकी वाइफ बहुत ज्यादा ही सुंदर है, बहुत ज्यादा अटेंशन गैदर करिए तो वो आपकी दुश्मन है। और आखिरी में पुत्र शत्रु अपंडिता, अगर आपका बेटा बने इंजीनियर या डॉक्टर हो, भगवान का भक्त नहीं है, उसे पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आपका वो दुश्मन है। सो प्रभु जी कहते हैं, मैं अभी अपने लाइफ के बारे में बताता हूं। प्रभु जी कहते हैं, तुम सबको पता है, प्रभु जी कहते हैं अपने शिष्यों को कि मैं तो शादीशुदा हूं, मैं पहले शादीशुदा था पहले आश्रम में, ठीक है। वो जैसे मेरी शादी हुई मुझे अपनी बीवी अच्छी नहीं लगी। मैं कहते हैं कि बीवी अच्छी लगनी चाहिए, अगर बीवी अच्छी नहीं लगेगी तो आप पति नहीं बन सकते। तो आपकी बीवी सुंदर हो या ना हो, तभी भी आपको कहना है कि बीवी सुंदर है, और आप कभी भी पति नहीं हो पाओगे। ऐसा बंकिम चंद्र कहते हैं अपने पोयम में कि आपकी वाइफ अच्छी हो या ना हो, फिर भी आपको कहना है कि वाइफ अच्छी है, वरना आप रह नहीं पाओगे साथ में। मैं क्या करूं, मगर फिर भी सब लोग कहते थे कि वाइफ अच्छी है, सुंदर है, बहुत फेथफुल है, मगर मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और मैंने विचार किया, प्रभु जी कहते हैं कि मैं दूसरा विवाह करूंगा, कि उस टाइम पे अलाउड था। और प्रभु जी ऐसा प्लानिंग कर रहे थे, मगर उनके जो पिताजी थे वो बहुत सेंटली पर्सन थे। वो कहते हैं कि मेरे डियर बॉय, माय डियर बॉय, मेरे बच्चे, तुम फिर से शादी करने की कोशिश कर रहे हो दूसरी शादी, मेरा निवेदन है कि ऐसा मत करो। अगर तुम्हें अपनी वाइफ अच्छी नहीं लगती तो ये श्राप नहीं, ये वरदान है, ये वरदान है। और प्रभु जी ने ऐसे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर दूसरी शादी नहीं की। फिर कहते हैं, मगर मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, प्रभु जी कह रहे जब संन्यास में थे अपने शिष्यों के सामने, अभी रियलाइज हो रहा है कि वो वरदान था मेरे लिए। अगर मैं अपनी वाइफ से आसक्त हो जाता तो मैं कभी भी संन्यास नहीं ले पाता, मैं कभी भी वैराग उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि स्त्रियों में वो आकर्षण भगवान ने दिया है जिससे आप आसक्त हो सकते हैं। अगर चीजों में जब आकर्षण रहेगा ही नहीं तो आसक्ति कहां से आएगी। तो आकर्षण ही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम आसक्त हो जाते हैं, या तो बेबस हो जाते हैं, मन में कह सकते हैं कि पहले आकर्षण में हम डुबकी मार देते हैं कुएं के अंदर और फिर बेबस हो जाते हैं, अभी क्या करें, तो आ गए, ठीक है। मगर कहते हैं जब आप डुबकी मारो कुएं के अंदर तो सीढ़ी भी देख लो कैसे बाहर निकलना है, अंधे ऐसे मत घुस जाना अंदर, मतलब ज्ञान के जरिए आप अंदर ड्यूटी करना, निभाना और फिर उससे बाहर निकलना। जो रियल लक्ष्य है लाइफ का वो है भगवत प्राप्ति, उसके पीछे भागना है। सो जब कोई आसक्त हो जाता है तो उसके लिए वो कोई भी चीज हो सकता है, ऐसे नहीं किसी वाइफ आसक्ति पैदा कर सकती है, किसी किसी का घर पैदा कर सकता है, किसी का पैसा आसक्ति पैदा कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग जरिए है। बट जो भी आसक्ति भौतिक आसक्ति होगी वो आपके लिए एक इंपेडिमेंट है, एक बोलते ना स्ट्रगल लाएगा आपके आध्यात्मिक प्रगति में, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि विदाउट वैराग्य आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैराग किसे? भौतिक चीजों से। सो कृष्णा पहले से बहुत सुंदर है, सबको पता है कृष्णा मीन्स आकर्षक, सर्व आकर्षक। अब वही कृष्णा अभी आ रहे हैं स्त्री के रूप में, मीन्स एडिशनल ब्यूटी, तो क्या होने वाला है, अब यही यहां पे चर्चा किया जाएगा। तो सिनेरियो ऐसा है कि ये देवतागण और असुरगण सबने समझौता कर लिया है, सबको अपना अपना फायदा चाहिए मगर इन्होंने समझौता कर दिया है। ठीक है, असुर तो हमेशा हमें खुद का फायदा दिखते हैं, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं रहता है। देवतागण ने कैसे कर लिया? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जाके समझौता कर लो और जाके समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तो सब लोग मंदारा पर्वत उठाते हैं। अब जब मैंने लास्ट टाइम क्लास दिया था यहां पे मंदारा पर्वत के वर्णन कर रहा था कि वो करोड़ों करोड़ टन का उसका वजन है, इतने हैवी पर्वत को इन्होंने उठाया, और उठाते जब लेके जा रहे थे संभाल नहीं पा रहे थे।